यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे नमः समस्तभूतानां आदिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे काल ठाए को नहीं एक ही कागज हो बस चलो लिखी बांकुड़ा सेती जयदेव गोविंद काका प्रेम सहित जय गोपाल जी बंचना उपरंच चिट्ठी तुमा लिखी ऊंचे से ऊंचो ध्यान होवे जिका उपाय लिखना चाहे सो ठीक छे निष्काम भाव सेती श्री भगवान के नाम को ध्यान सहित निरंतर जप के समान और कोई ऊंचो साधन नहीं छे भगवान को नाम जप और भगवान को ध्यान इसलिए निष्काम भाव सेती ध्यान सहित भगवान के नाम को जिस तरिया भी जप हो सके वो उपाय काम में लेनो चाहे एकांत में बैठकर भगवान के ध्यान माय मगन रहनो चाहे ज्यों ध्रुव जी मगन हुआ करता था प्रेम भक्ति प्रकाश पुस्तक माय जैसो लिखियो है उस विजब स्तुति और ध्यान करके ध्यान माय मगन रहनो चाहे ध्यान के समय आलस्य और संसार की फुरना होवे तो गीता जी में जो ध्यान का श्लोक है उसके मुजब ध्यान के विषय माय बुद्धि से विचार करनो चाहे ऐसो ध्यान निरंतर किस तरह से हुए वो उपाय करनो चाहे उस माफिक श्री गीता जी को अर्थ और भाव को विचार करने से ती मन भगवान माए लागने सके छे सत्पुरुषा का संग करकर उनके पास बैठकर उनके कहे मुजब ध्यान माए स्थित होनो चाहे जो कोई ध्यान माय विघ्न आवे उनके विषय माय सत्पुरुषा से पूछनो चाहे उनके कहे मुझे साधन करनो चाहे जो कुछ होवे निरंतर परमात्मा का ध्यान अटल हर समय रहनो चाहे यदि मन संसार माय जावे तो बहुत जोर से एक तार श्री परमेश्वर के नाम को जप श्वास द्वारा आनंदमय होकर करनो चाहे राम 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 जोर जोर से बोलनो आनंद बिना होए भी आनंदमय आनंद मनमय मानकर बार बार मगन होने से ती आनंद प्रकट होने सके छे जप एक तार करने से ती पाप नाश होए कर संसार की फुरना नाश होने सके छे फिर भगवान माय अटल ध्यान होने सके छे इस प्रकार सेठ जी का काल मैं देखिया 5-7 पन्ना है एक ही पन्नो सेठ जी की बाता है पुराण उपनिषद सु कम नहीं है विदर्भ देश के एक राजा थे उनका नाम श्वेत था बड़े अच्छे पुरुष थे राज्य करते रहने पर भी राज्य से वैराग्य पूर्वक रहा करते थे पूर्ण वैराग्य होने पर उन्होंने लंबे समय तक जंगल में जाकर निवास किया, वहां तपस्या की, ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो गई। परंतु उन्होंने जीवन में कभी भी किसी को भोजन दान नहीं किया, इसलिए ब्रह्मलोक में भूख से पीड़ित रहते थे। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे महाराज, आप तो पृथ्वी पर बहुत बड़े राजा थे, बड़े वैराग्यवान थे, खूब तपस्या किए थे, तभी तो आप हमारे ब्रह्मलोक में आए हो। ब्रह्मलोक में किसी वस्तु की कमी नहीं रहती, पर आप भूख से पीड़ित रहते हो। तुमने किसी भिक्षुक को कभी भिक्षा नहीं दी होगी, विविध भोगों से केवल अपने शरीर को पाला पोसा होगा, और फिर तप किया, तप के फल से मेरे लोक में तो आ गए। अब यहाँ तुमको कोई दूसरी चीज खाने को मिलेगी नहीं, तो जो तुम्हारा मृत शरीर है वो देखो इस धरती पर पड़ा है, वह पुष्ट और अक्षय हमने कर दिया है, तुम उसी का मांस खाओ और भूख मिटाओ। अगस्त ऋषि के मिलने पर तुम इस घृणित भोजन से छूट जाओगे। उन्हीं राजा श्वेत को ब्रह्मलोक से आकर रोज अपना शव जंगल में आकर खाना पड़ता था, वह अन्नदान न देने का बुरा फल था। फिर एक दिन अगस्त ऋषि उसी जंगल में घूमते घामते आ गए, तब इनका छुटकारा हुआ। इसलिए हमारे शास्त्रों में बताया है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्नदान अवश्य करना चाहिए। यहाँ का दिया हुआ अन्न परलोक में पुनर्जन्म होने पर भी मिलता है। ये आवश्यक नहीं है कि खूब सारा देवें, ना ही कितना भी हो, जितने परिमाण देने में आपको कोई कष्ट न हो उतना ही देवें। दान की ऐसी महिमा शास्त्रों में आती है। भगवान वेदव्यास और एक कीड़े का संवाद। पाप बहुल कलयुग में प्राय ऐसे मनुष्य सर्वत्र मिलते हैं जो न तो ईश्वर के अवतार पर विश्वास करते हैं, न धर्म पर करते हैं, न पितरों के श्राद्ध पर करते हैं, न पुराणों की बातों पर विश्वास करते हैं। इन मनुष्यों के मध्य में कभी कभी कोई ऐसी घटनाएं हो जाती है जो उनको आश्चर्य में डालने वाली होती है, जैसा कि पुनर्जन्म की घटनाएं जो प्राय कल्याण के अंकों में प्रकाशित रहती है, फिर भी उन मनुष्यों के हृदय में ज्ञान अंकुरित क्यों नहीं होता? कारण कि वे श्रद्धा और संस्कार से रहित होते हैं। श्रद्धा और संस्कार क्यों नहीं होते? कि उनके अनेक अनेक जन्मों के अंदर पाप के मैल रहते हैं, इस कारण श्रद्धा और संस्कार जैसी अच्छी चीज उनमें पैदा ही नहीं होती है। हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसी बहुत सी घटनाएं जिनको पढ़ने और सुनने से मनुष्य को धर्म पर, ईश्वर पर, पुनर्जन्म पर, मोक्ष पर और नाना लोकों की प्राप्ति पर, सत्कर्म पर विश्वास होता है। यहाँ हम आपको कुछ घटनाएं बता रहे हैं जो पौराणिक घटनाएं हैं। सरसैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर जी से कहा कि हे युधिष्ठिर, प्राचीन काल की बात है, एक समय भगवान वेदव्यास जी कहीं जा रहे थे, मार्ग में उनकी दृष्टि एक कीड़े पर पड़ी जो गाड़ी के लीक में बहुत तेजी से भाग रहा था। चलते हैं जब गाड़ी की लीक पड़े यूं जल्दी 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 जाओ, कीड़ों बड़ी तेजी से भाग रहा था। वेदव्यास जी उस कीड़े के निकट आकर पूछने लगे, ओ कीड़े, तू इतना आतुरता से क्यों भाग रहा है? आज तुझ पर कौन सी विपत्ति आ रही है? कीड़े ने कहा, देखिए ना, वो बैलगाड़ी कितनी तेजी से चली आ रही है, मुझे भय है कि कहीं आकर वो मुझे कुचल न दे। व्यास जी ने कहा, अरे कीट, तू तो अधम तिर्यक योनि में पड़ा हुआ है, तू मर जाएगा तो अच्छा ही है। तू किस पाप के कारण से तिर्यक योनि में उत्पन्न हुआ? कीट ने कहा, महाराज पहले मैं बहुत बड़ा एक धनी था, पर मैं शूद्र योनि में पैदा हुआ था। तो धनी था और शूद्र था तो ब्राह्मणों का अपमान करता था। मेरे मन में ये आता था कि देखो ब्राह्मण कैसे मांगते होते हैं, खाते रहते हैं, मांग मांग के खाते हैं, और देखो हम शूद्र भी हैं तो कितने पैसे वाले हैं। पैसा मेरे पास बहुत था परंतु हृदय मेरे पास नहीं था। मैं बड़ा कंजूस था और सूद खोर था, ब्याज बट्टे से काम चलाना। सभी वर्णों की प्रिय वस्तुओं का हरण किया करता था। मैंने कभी दान नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया। अपने कुटुंब और स्त्री का पालन पोषण करना, बस इसी में ही पैसा खर्च करता था। खाना पीना में मेरा बहुत गंदा था, मांस खाता था। एक बात है, मैं अपने बूढ़ी माँ की सेवा करता था। एक बार अपने घर में आए हुए अतिथि का सत्कार किया, केवल इसी बल पर कि घर में अतिथि आ गए, मैंने प्रेम से उनसे बातचीत की, भोजन करा दिया। उसके बाद मेरी स्मृति मेरा साथ छोड़ नहीं रही है। अब इसी बात पर मुझे पूर्व जन्म की स्मृति है। व्यास जी ने कहा कि एक ईट, आज तूने मेरा दर्शन किया और तूने मेरे सामने अपने पाप प्रकट कर दिए। अब तेरे 10 जन्मों के बाद तुझे अपने तपोबल से परम पद मिल जाएगा। एक स्थान के ऊपर कर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते हैं तो उनका पुत्र होगा और मेरी कृपा से तेरा मोक्ष हो जाएगा। व्यास जी इतना कहकर चले गए। बैलगाड़ी आई, कीड़ा मर गया। उसके बाद वो गोदा है, शाही है, शूकर है, कूकर है, श्रृगाल है, चांडाल है, ऐसे चल करके फिर सतशूद्र हुआ। शूद्र भी दो होते हैं, एक सतशूद्र एक असतशूद्र। सतशूद्र वो होता है कि जिसके घर का पानी ब्राह्मण भी पी सकता है, और असत शूद्र वो होता है जिसका पानी ब्राह्मण भी क्या शूद्र भी नहीं पीते। उसके बाद वो एक राजपुत्र हुआ, तब व्यास जी के पास गया और कहने लगा, महाराज मैं राजपुत्र तक तो आ गया हूं। तब कहा कि देखो अब तुम्हारे पास में धन भी आ गया है और तुम्हें ये राज मिल गया है, अब तुम प्रजा का पालन करो, देह त्याग करो, अगला जन्म केवल ब्राह्मण का है। तब व्यास जी ने इस प्रकार से उसको समझाया और फिर अगले जन्म में ब्राह्मण बना। उसको व्यास जी ने तत्व ज्ञान दिया और परम पद की प्राप्ति हुई। तो देखो युधिष्ठिर, यह एक महात्मा का किसी भी प्रकार से संपर्क हो जाता है तो वो अंत में इस प्रकार से कल्याण करके ही छोड़ते हैं। ये कथा महाभारत के अनुशासन पर्व में आई हुई है। इसी प्रकार मार्कंडेय पुराण में आती है, एक समय महर्षि जैमिनी मार्कंडेय मुनि के पास गए और महाभारत संबंधी कुछ संदेह उपस्थित किए। तब संध्या वंदन का समय होने के कारण मार्कंडेय मुनि ने उनको विंध्य पर्वत की कंदरा में रहने वाले 4 पक्षियों के पास जाने को कहा। महर्षि जैमिनी के पक्षियों के बारे में पूछे जाने पर मार्कंडेय जी ने बताया कि वे मुनिवर शमी के द्वारा पालित पक्षी हैं। एक समय दुर्वासा जी के द्वारा शापित वपु नामक अप्सरा ने गरुड़वंशीय कंधर नामक पक्षी की पत्नी मदनिका के गर्भ से तारक्षी पक्षिणी के रूप में अवतार लिया था। वही तारक्षी द्रोण नामक एक ब्राह्मण को विवाही गई थी, जिससे गर्भ धारण करने पर 3.5 महीने बाद वह तारक्षी जब महाभारत युद्ध हो रहा था उड़ती हुई उधर से निकली और अर्जुन के बाण से त्वचा छिल जाने पर वह गर्भस्थ अंडों को गिराकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। संयोगवश उसी समय भगदत्त के सुप्रभीक नामक गजराज का महान गलघंट भी बाण लगने से टूट कर गिरा और उन अंडों को आच्छादित कर दिया। युद्ध समाप्ति के बाद शिष्यों के साथ विचार करते हुए शमीक मुनि उनको उठा लाए। आश्रम में परिपुष्ट होकर एक दिन वे पक्षी मनुष्य की वाणी में बोलते हुए गुरु को प्रणाम करने लगे। मुनिवर शमीक ने आश्चर्य से पूछा और कहा कि आप लोगों का पूर्व वृत्तांत क्या है। उन्होंने बताया कि हम चारों भाई पूर्व जन्म में सुकृष नामक ब्राह्मण के ज्ञानी पुत्र थे। एक दिन हमने पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया, इतना ही हमारे जीवन में अपराध हुआ है। इस अपराध के कारण से हमको तिर्यक योनि में आने का शाप मिल गया। हे गुरु महाराज, वे ही हम चारों ब्राह्मण कुमार अब पक्षी होकर तारक्षी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। हमारी माता महाभारत के युद्ध में मारी गई है। अब हमको आज्ञा दीजिए, हम विंध्याचल पर्वत की मनोहर कंदरा में जाकर निवास करेंगे। मार्कंडेय जी ने कहा कि जैमिनी, तुम वहां जाओ और उन पक्षियों से वेदिक ज्ञान ले ओ। तब वे जैमिनी वहां गए और उनसे पूछा कि केवल एक पिता की आज्ञा के भंग से आपको इतना बड़ा कष्ट देखना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में एक ही भूल हुई थी, उसका ये फल मिला कि हम लोग किस प्रकार से पक्षी होनी में आए। इसलिए माता पिता की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जन्म मृत्यु से बचने के उपाय, पुनर्जन्म 84 लाख योनियों से बचने के उपाय। जन्म मरण के दुख से बचना हो तो मन और इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। विषय विकार उत्पन्न करने वाली वस्तु और व्यसनों से चित्त को हटाना चाहिए। जगन नियंता श्री भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए। वेदों की आज्ञा सर्वोपरि है ऐसा मान करके अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। अपने पास कुतर्की और नास्तिक लोगों का संग हो तो उसे बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। प्रभु के दर्शन प्राप्ति के लिए ध्रुव और प्रह्लाद को अपने सामने आदर्श मानना चाहिए। दूसरा, घास और फूस खाकर विश्व के लोगों को पोषण प्रदान करने वाली सर्वदेवमयी जगत जननी गौ माता तथा उनके वंश की सेवा, पूजा, पालन पोषण, रक्षण करते रहना चाहिए। गांव गांव में गौशाला हो, सुविधानुसार अपने घर में चाहे एक गाय भी हो, गाय रखना चाहिए। गौ रखने से धर्म की वृद्धि होती है, अर्थ का सदुपयोग होता है, अर्थ में ममता नहीं रहती है और अर्थ के कमाने में जो दोष होता है वो दोष समाप्त हो जाता है। देश में सर्वत्र पूर्ण रूप से गोवंश की हत्या कानून के द्वारा बंद हो जाए तो हमारे देश का कितना बड़ा कल्याण हो सकता है, कह नहीं सकते हैं। तीसरा, इस लोक में सब प्रकार से सुखी सुरक्षित रहने तथा मृत्यु के पश्चात प्रभु पद की प्राप्ति के लिए रामचंद्र जी का, युधिष्ठिर महाराज का, पृथु का, विक्रमादित्य का, ऐसे ऐसे धर्मनिष्ठ पुरुषों का और अटल न्याय करने वाले पुरुषों का आदर्श स्वीकार करना चाहिए। चौथा, आबादी घटाने के लिए परिवार नियोजन जैसी धर्म विरुद्ध योजनाएं स्वीकार नहीं करनी चाहिए। परिवार का न बढ़ना अपने हाथ की बात है, अतः संयम पूर्वक परिवार का नियंत्रण किया जा सकता है। कुटीर उद्योग तथा परती जमीन के कृषि योग्य बनाकर अधिक अन्न उत्पादन करने की चेष्टा करनी चाहिए। पांचवा, घूस रिश्वत लेना और चोर बजारी करना, भ्रष्टाचार, ये अपने जीवन में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। समय पर वृष्टि हो सके इसके लिए विधि पूर्वक यज्ञ करें, हवन करें, होम करें और उसमें शुद्ध गाय के घी का उपयोग करें, जिससे देवतागण यज्ञ के हविष्य को स्वीकार करके वे वापिस उत्तम बदलों के द्वारा वर्षा प्रदान कर सकते हैं। सिनेमा मनोरंजन प्रदान करने के स्थान में चोरी, लूट, व्यभिचार, अनाचार, दुराचार आदि दुर्गुण और नाना प्रकार के व्यसनों को बढ़ावा देते हैं, इसलिए सिनेमाओं से दूर रहना चाहिए। आजकल हिंदू जाति के आचार्य, विद्वान, श्रीमंत लोगों की शिथिलता के कारण ईसाई, मुसलमान आदि विधर्मी बड़े जोर शोर से हिंदू धर्म के विरुद्ध मिथ्या आरोप करके हिंदुओं को ईसाई मुसलमान बनाते हैं। इनको रोकने के लिए जागृत रहना चाहिए और गरीबों को जो फुसलाकर सुविधा देकर धर्मच्युत करते हैं, उन गरीबों की यथाशक्ति हिंदू परिवार को पूरी सेवा सुविधा देनी चाहिए, जिससे धर्मांध व्यक्तियों को मुंह तोड़कर एक सरलता से, सीधेपन से जवाब दे सकें। नवीं बात, जहां तक हो अपनी मातृभाषा या हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देना चाहिए। विश्व की सारी भाषाओं की जननी संस्कृत का सार्वभौम प्रचार होना चाहिए, क्योंकि संस्कृत के अंदर ही हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे उपनिषद, हमारे शास्त्र संस्कृति के साथ हैं। संस्कृत और संस्कृति, संस्कृति माने उच्च व्यवहार, उच्च आदर्श, ये वेदों में, पुराणों में है। इसलिए इनमें संस्कृत भाषा का ज्ञान होगा तो इन शास्त्रों में प्रवेश होगा। संस्कृत भाषा के ज्ञान के बिना ये पुस्तकें केवल पढ़ी रह जाएंगी, कोई पढ़ने वाला ही नहीं होगा। अतः संस्कृत पढ़ना चाहिए। हमारे हिंदुओं की सारी सामाजिक व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, इसलिए मनुष्यों को हर बात पर विचार करना चाहिए। विवाह वगैरह करते हैं उस समय अपने धर्म को सामने रखकर करना चाहिए, अपने कुल की परंपरा को साथ में रख के करना चाहिए। अपनी जाति हो, अपना ठीक ढंग से गोत्र वगैरह मिलते हो, उनके साथ ही विवाह करना चाहिए। देवर्षि नारद जी ने कहा है कि लाखों वर्षों तपस्या करके, भगवत आराधना करके अपने पाप का नाश जिसने किया है, वह भारतवर्ष जैसी पवित्र भूमि में, हिंदू जाति में, उत्तम द्विज कुल में जन्म लेकर परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र की भक्ति का शुद्ध अंतःकरण में उदय हो जाए, तो वो लाखों वर्षों का तप है ना, वो एक क्षण के अंदर मिल जाता है। मनु महाराज कहते हैं कि उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए यहाँ के ब्राह्मणों के पास में शिक्षा दुनिया भर के लोगों को लेनी चाहिए। इन बातों पर ध्यान रहने से जीवन संयमित होता है। नल दमयंती के पूर्व जन्म का वृत्तांत शिव पुराण में आया है। आबू पर्वत के समीप पहले आहुक नाम का एक भील रहता था। उसकी स्त्री आहुआ थी, आहुआ। वह बड़ी पतिव्रता और धर्मशीला थी। दोनों स्त्री पुरुष भील जाति के थे, परंतु बड़े शिव भक्त और अतिथि सेवक थे। एक बार भगवान शंकर ने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने एक यति का रूप धारण किया और संध्या के समय उसके घर पर आकर कहने लगे, ए भील, तुम्हारा कल्याण हो। आज रात भर मैं तुम्हारे यहीं रहना चाहता हूँ। तुम दया करके एक रात मुझे यह निवास स्थान दे दोगे? भील ने कहा, महाराज, मेरे पास स्थान तो बहुत बड़ा है, पर आप कैसे रहोगे? क्योंकि मैं तो भील जाति का हूँ, आप बहुत बड़े यति हैं, कैसे रह पाएंगे? इस पर यति चलने के लिए तैयार हुए। इतने में स्त्री ने अपने पति से कहा, पतिदेव, ये क्या करते हैं? एक यति आए, उनको लौटा रहे? नहीं नहीं, गृहस्थ धर्म का विचार कीजिए। इसलिए आप दोनों तो घर के भीतर रहिए, मैं अपनी रक्षा के लिए कुछ बड़े शस्त्रों को लेकर दरवाजे पर बैठी रहूंगी। भील ने कहा कि अरे, तुमने तो बहुत अच्छी बात सोची, मेरे द्वारा तो यति का अपराध हो जाता कि आप पुरुष अंदर रहो, मैं स्त्री हूँ, शस्त्र लेकर के बाहर रहती हूँ, अपनी रक्षा खुद करूंगी। भील ने कहा, तुम बात बहुत अच्छी कहती हो, पर एक बात है, तुमको मैं बाहर रखूं और मैं यहाँ अंदर यति के पास रहूं, पत्नी का इस प्रकार से बाहर खड़ा रहना मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि तुम अबला हो, स्त्री हो, और कोई दुष्ट लोग होते हैं वो तो प्राय बहुत बलवान होते हैं, तो कुछ ठीक नहीं लगता है। तथापि तुमने कहा, एक बार यति को हम बुला लाते हैं। तो यति को बुला लाए। अब उसने यति के सामने कहा, महाराज, ये अबला है, अबला की रक्षा करना पति का धर्म होता है। जिस पति की रक्षा के लिए अबला शस्त्र लेकर खड़ी और पति आराम से मकान में रहे, ये पति का धर्म नहीं होता। मैं क्या करूं महाराज, ये कायदा नहीं है। अब आप यति हो, मैं अपनी स्त्री को घर में रखूं और बाहर मैं खड़ा रहूं, तो आपको संकोच होगा। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मैंने ये निश्चय किया है कि आप यहाँ हैं, मैं बाहर दरवाजे पर बैठा हूँ। अच्छी बात है भाई, ये तुम्हारे आपस, यति ने कही, तुम्हारे आपस की सोचने की बात है, हमारे कोई परेशानी नहीं है। तो वो शस्त्र लेकर दरवाजे पर बैठ गया। रात को बहुत बड़े हिंसक पशुओं ने आकर आक्रमण किया। आक्रमण करने पर उस भील को मार दिया, भील मर गया। प्रातःकाल होने पर यति और उसके स्त्री वगैरह सब वहां आए, देखे दरवाजे पर, तो भील तो मरा पड़ा था। इस पर यति बहुत दुखी हुई, अरे मेरे कारण से ये हुआ। अब वो उस स्त्री को बड़ी सांत्वना देने लगे। पर भील ने कहा, महाराज, इसमें आप शोक चिंता क्यों करते हो? ऐसी मृत्यु तो बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। ऐसा पति मुझे मिला है जो एक संत की सेवा में अपने प्राण न्योछावर कर दिए, अब मैं भी इनके साथ सती होऊंगी। इसमें तो हम दोनों का परम कल्याण हो गया। यूं कहकर उसने पति को चिता पर रखकर वह भी उस अग्नि में प्रविष्ट होने के लिए तैयार हो गई। इस पर भगवान शंकर डमरू, त्रिशूल आदि आयुधों के साथ वहीं पर प्रकट हो गए और उन्होंने बार बार उस भीलनी से वर मांगने को कहा, पर वह कुछ न बोलकर सर्वथा भगवान के ध्यान में डूब गई, कुछ नहीं बोली। इस पर भगवान ने उसे वरदान दिया कि अगले जन्म में तुम्हारा पति निषद देश का राजा वीरसेन का पुत्र नल बनेगा और तुम्हारा जन्म विदर्भ देश की राजकुमारी भीमसेन की पुत्री दमयंती के रूप में होगा। यह यति भी हंस होगा, जो यति था वो हंस होगा, और यही तुम दोनों का संयोग कराएगा वहां तुम लोग अनंत राज सुखों का भोग करके अंत में दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त करोगे। यूं कहकर भगवान शंकर वहीं अचलेश्वर लिंग के रूप में स्थित हो गए और कालांतर में यही दोनों भील दंपति नल दमयंती के रूप में अवतीर्ण हुए। ये कथा शिव पुराण शतरुद्र संगीता 28वें अध्याय में आई हुई है।